हम बात कर रहे थे कि 25 अगस्त को भगवान कृष्ण का बर्थडे है ना। आप एक घर में नहीं रहते आप, और घर में बात करने से यहाँ पर आके आप बात कर रहे हो, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है? बच्चों को चाहे आप बाहर ले जाओ, बच्चों को बाहर खेलने दो। सो भगवान जो है, भगवान का जन्मदिन है 25 अगस्त को, भगवान प्रकट हुए थे। और भगवान कहाँ प्रकट हुए थे? एक कारागार में, प्रिजन, जेल में भगवान का जन्म हुआ, प्रकट हुए भगवान। लोग हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, भगवान जेल में पैदा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे हम पैदा हुए भगवान भी वैसे पैदा हो रहे हैं। तो क्योंकि लोग गलत नहीं समझ लें, भगवान के इस धरा धाम पे आने को, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विशेष हिदायत दी, विशेष रूप से अर्जुन को बोला कि देखो, आप मेरे जो जन्म है उसको मामूली मत समझना, उसको भौतिक मत समझ लेना, और मेरे कर्म को भी भौतिक मत समझना। तो भगवान ने कहा, कर्म जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। एवं यो वेति तत्वता, और इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? इसलिए समझना चाहिए कि अगर हमने सिर्फ यही समझ लिया कि भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान के कर्म दिव्य हैं, तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सोऽर्जुना, कि अगर इतना ही जान लिया कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है, तो इतना जान लिया तो उससे क्या होगा कि ये शरीर छोड़ने पर दोबारा जन्म नहीं होगा, तो क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा? तो कोई ये नहीं समझ ले कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न, इतने पे भगवान नहीं रुके, क्योंकि अगर यही रुक जाते तो कोई बोल सकता था कि हो सकता है अगर इतना जान लिया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अगर आपने जान लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि माम इति अर्जुना, हे अर्जुन, वो मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास आ जाएगा मतलब मेरे घर आ जाएगा, और भगवान के घर को धाम बोलते हैं, और उसका एक नाम है वैकुंठ। वैकुंठ चले। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि भगवान का जो जन्म है वो हमारी तरह भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से बंध कर नहीं होता। भगवान यहाँ पर आते हैं विशेष कार्य के लिए। तो किस काम के लिए आते हैं भगवान? तो भगवान तीन काम के लिए आते हैं, है ना? कौन से तीन काम है? परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय। तो पहला काम क्या है? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का कल्याण करने के लिए, है ना? परित्राणाय साधुनाम, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, जो अच्छे काम करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सदैव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। किस प्रकार चिंतन में लगे रहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो ऐसे साधु हैं जो सदैव भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे साधुओं का कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं, पहली बात। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो सारे लोग इस धरती पर भगवान के भक्त हैं, है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको क्या बोलते हैं? दुष्कृताम, पापी, जो गलत काम कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं दुष्कृताम, तो दुष्टों का संहार करने के लिए। तो क्या भगवान के हाथों से जिन असुरों का संहार हुआ, उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या फायदा हुआ? हाँ, धाम नहीं गए, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, उनको धाम नहीं गए। कुछ सोचते हैं कि जो असुरों का भगवान ने अघासुर बकासुर और दुनिया भर के असुरों को मारा, तो ऐसा नहीं कि वो सारे सीधा भगवान का स्पर्श होते ही भगवत धाम चले गए, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, अच्छी गति मिल गई। हाँ, और तीसरा काम क्या है? धर्म की स्थापना करना। तो भगवान ने धर्म की स्थापना कैसे की? भगवान ने धर्म की स्थापना दो प्रकार से की। पहला उन्होंने कार्य किया कि जो धर्म का प्रतीक है, कौन? युधिष्ठिर महाराज, उनको पूरे संसार का शासन सौंपा कि आप लोगों को बताओ कि लोगों का जो सबसे ज्यादा कल्याण किसमें है। तो हम सोच सकते हैं कि युधिष्ठिर को क्या पता कि सबसे ज्यादा कल्याण किसमें होगा। तो युधिष्ठिर ने दिखाया कि उनको पता है कि सबसे ज्यादा कल्याणकारी कार्य क्या है। तो जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, है ना, तो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो राजसूय यज्ञ में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। तो सबने पूछा कि किसकी पूजा करनी चाहिए, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कि भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और इतने सारे बहुत सम्मान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने पूजा के लिए किसको चुना? भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान कृष्ण की पूजा में जुड़ेंगे तो उनको देखकर और भी सारे लोग भगवान की पूजा में जुड़ेंगे, है ना। जैसे जैसे जो महाजन है, जो महान लोग हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, हाँ, स यत प्रमाणम कुरुते, जैसा वो प्रमाण आदर्श स्थापित करते हैं, जो बड़े लोग हैं, बाकी लोग वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। जैसे मोदी है, आज की डेट में मोदी अगर कुछ एक काम करेगा तो सारे लोग उसकी नकल करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। सो जो भी महाजन है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो एक उच्च पद पर आसीन है, जैसा काम वो करेंगे बाकी लोग भी वैसा काम करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को जो है राज सिंहासन दिया, पूरे संसार का राज्य दिया, ताकि सब लोग उनको देखें गौर से। पहले लोग किसको देख रहे थे? धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, है ना। दुर्योधन अच्छा राजा था, ऐसा नहीं था कि दुर्योधन को राज करना नहीं आता था, बहुत अच्छा राजा था वो। कैसे पूरा शासन चलाना है, कैसे कर वसूलना है, कैसे उस कर को लोगों के काम, लोगों की भलाई में लगाना है, सब पता था दुर्योधन को। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि वो भगवान से ईर्ष्या करता था। भगवान से ईर्ष्या करता था। वो क्या सोचता था, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम भगवान सुखी, कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर हूं, और क्योंकि मैं ईश्वर हूं इसलिए तुम कृष्ण को भोग मत लगाओ, कृष्ण को सुख मत दो, मैं भोगी हूं, मैं मुझे हर चीज जो है मेरी प्रसन्नता के लिए उपयोग में आने चाहिए। सिद्धो हम बलवान सुखी, मेरे पास इतने सारे राजा महाराजा इतनी सेनाएं हैं, हाँ, और तरह तरह के राजाओं का मेरे को समर्थन प्राप्त है, जरासंध कर्ण हाँ द्रोणाचार्य इत्यादि सारे दुर्योधन का समर्थन करते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य कर्ण जो है दुर्योधन का नमक खा रहे थे, नमक हरामी कैसे करते हैं, नहीं। सो दुर्योधन ये सोचता था कि सब पूरा संसार जो है मेरे भोग के लिए, ये गलती थी उसकी, और क्योंकि दुर्योधन ऐसा सोच रहा था इसीलिए उसको देख के बाकी लोग भी ऐसा सोचना शुरू कर रहे थे। तो भगवान ने उसको रोकने के लिए कि जो अबोध जनता है जनसाधारण है, तो थोड़ा चुप कराओ ना, जो साधारण जनता है जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है ज्ञान नहीं है वो गलत रास्ते पे नहीं चले जाए, तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को हटाया और महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर आसीन किया, है ना। तो ये तो एक काम हुआ धर्म की स्थापना के लिए, और भगवान ने क्या किया दूसरा काम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है धर्म की स्थापना के लिए, भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, है ना। भगवान ने ये बताया कि चलो देखो आपको मनुष्य जन्म तो मिल गया, अब आप मनुष्य बन गए हो, लेकिन ये मनुष्य जीवन चलाना कैसे है, आप एक मोबाइल खरीदते हो, वो मोबाइल कैसे चलाना है, उसमें साथ में एक वो मिलता है ना, एक किताब मिलती है उसको मैनुअल कहते हैं उसको, है ना, उसमें लिखा होता है ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये बटन दबाओगे तो ये होगा, हाँ उसको मैनुअल कहते हैं। आप वॉशिंग मशीन खरीदी तो उसमें बताते हैं कि कपड़े सुखाने के लिए कौन सा बटन है, घुमाने के लिए कपड़ों को कौन सा बटन है, वो सारा जो मशीन में सारे बटन जो होते हैं एक किताब में लिखे होते हैं, उसमें डायग्राम बने होते हैं चित्र बने होते हैं कैसे चलेगी वो मशीन। अगर हम वो हम उस किताब को नहीं पढ़े उल्टे सीधे बटन दबाएं तो क्या होगा, तो मशीन खराब हो जाएगी। बहुत टाइम पहले की बात है, मैं एक किसी भक्त के साथ ब्रह्मचारियों के साथ मैं ठहरा था किसी के घर में, वो घर वाले कहीं गए हुए थे अमेरिका गए थे, उनका घर खाली था तो हमने कहा चलो कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं और थोड़ा बुक्स पे रिसर्च करेंगे। तो हम वहाँ पर रुके तो उन्होंने उनके घर में ऑटोमेटिक मशीन थी, तो हमने कहा चलो कपड़े धोते हैं इसके अंदर, तो हम सब ने अपने धोती कुर्ते उस मशीन में डाले, अब कैसे चलेगी, तो हमने अपना दिमाग लगाकर 2-4-5 बटन दबाए, खराब हो गई मशीन। तो हमने कहा यार ये तो खराब हो गई, वो आके बोलेंगे हमारी मशीन खराब कर दी। तो शाम को वो सफाई करने वाली आई नौकरानी, तो हमने उसको बोला ये मशीन चल रही थी, उसने 2 बटन दबाए चालू हो गई मशीन फर्स्ट क्लास, है ना। तो जिसको आता है उसके लिए उस मशीन को मशीन का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है, जिसको नहीं आता वो गड़बड़ कर देगा, है ना। और इस संसार की सबसे अजीबोगरीब सबसे मुश्किल मशीन कौन सी है, हम लोग हैं, हमारा ये शरीर है, है ना। ये शरीर किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, एक ही तरीका है शरीर बनाने का जो भगवान ने दिया हुआ है, नहीं। अब वो शरीर मिल गया भगवान की दया से, तो इस शरीर का उपयोग कैसे करना है, ये शरीर कैसे चलेगा ठीक से, वो जानने के लिए भगवान ने हमें एक किताब दी और उस किताब का नाम है भगवद गीता। सो हमें, आप सबको, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज भगवद गीता पढ़ें, है ना। क्यों भगवद गीता पढ़ें? क्योंकि भगवान प्रकट ही हुए थे ये भगवद गीता का संदेश देने के लिए, क्योंकि भगवान को पता था मैं हमेशा तो यहाँ पर अब नहीं बैठा रहूँगा, मुझे और भी काम है, और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी लोगों का कल्याण करना है, यहाँ से निकलूँगा कहीं और चला जाऊँगा। तो जैसे सूर्य है, सूर्य हमेशा कहीं ना कहीं उदय हो रहा है, नहीं? अभी सुबह यहाँ पर उदय हुआ था, उसके बाद किसी और देश में उदय होगा, फिर किसी और देश में उदय होगा, अभी इस समय अमेरिका वगैरह देशों में सूर्य उदय हो रहा होगा, है ना। सो जिस प्रकार सूर्य हमेशा उदय होता रहता है, जिस प्रकार किसी ना किसी जगह पर हमेशा दोपहर मिलेगी, है ना, और कहीं ना कहीं सूर्य हमेशा अस्त हो रहा होगा, उसी प्रकार भगवान भी हमेशा हर क्षण कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं। भगवान हर क्षण कहीं ना कहीं अपनी एक लीला का आस्वादन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में भगवान भगवद गीता का संदेश दे रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, भगवान अभी भी किसी ब्रह्मांड में भगवद गीता का संदेश अर्जुन को सुना रहे होंगे। और क्योंकि ये भगवान की लीला हमेशा किसी न किसी ब्रह्मांड में होती रहती है, इसलिए इसको नित्य लीला कहा जाता है। जब भगवान की लीलाएं हैं, बोलते हैं ना कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं, क्यों बोलते हैं? इसी कारण से बोलते हैं कि भगवान की लीलाएं हर क्षण कहीं ना कहीं हो रही हैं, है ना। इसीलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चलो वीरवार को जन्माष्टमी है तो वीरवार को जन्माष्टमी मनाएंगे। आप आज भी जन्माष्टमी मना सकते हो, आप हर रोज जन्माष्टमी मना सकते हो, आप, है ना, हर रोज जन्माष्टमी मना सकते हो। और एक भक्त का भाव भी यही होना चाहिए कि वो रोज भगवान के उत्सव मनाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 364 दिन हम भोग में लगे रहें और 365वें दिन हम एकदम शुद्ध भाव में आकर भगवान की भक्ति करें कि एक दिन हो, आज तो भगवान का जन्मदिन है, चलो हम बहुत ही शुद्ध मन से भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाएंगे, अच्छा है, लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छे भाव से, बहुत ही सात्विक भाव से अगर हम भगवान का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका है कि हम रोज ये सोचें कि भगवान कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं, हम रोज भगवान का जन्मदिन मनाएं। और रोज भगवान का जन्मदिन मनाने का मतलब है कि हम रोज भगवान को अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर खिलाएं, रोज भगवान का गुणगान करें। तो आप बोलो हमें भगवान का गुणगान करना नहीं आता, हम कैसे भगवान का गुणगान करें, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती, क्या बोले, हे भगवान आप बहुत सुंदर हो, कैसे बोले, चलो एक लाइन बोल दी, आगे क्या बोले। अगर हमने 2 घंटे तक अगर भगवान का गुणगान करना हो तो क्या बोलेंगे, हमारे पास शब्द नहीं है। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ 2 लाइन बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अगर आप ये 8 शब्दों का, 16 अक्षरों का मंत्र जो है, अगर आप 2 घंटे तक बोल दोगे रोज, तो कितनी माला हो जाएंगी? 16 माला हो जाएगी। आप 16 माला करोगे और हरेक मंत्र, हरेक शब्द आप जितनी भी बार बोलोगे उतनी ही बार भगवान का गुणगान होगा। आप बार बार बोलोगे भगवान आप बहुत सुंदर हो, भगवान आप बहुत सुंदर हो, 2 घंटे तक हम नहीं बोल पाएंगे, तो भगवान ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान ने बोला ठीक है आप सिर्फ यही बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, तो सबसे अधिक आकर्षक है। और सबसे अधिक आकर्षक कैसे होगा कोई व्यक्ति? सबसे अधिक आकर्षक होगा जब वो बहुत सुंदर सुंदर काम करेगा, नहीं? उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण होंगे, तो बहुत सारा धन होगा, नहीं? तो ये सारी चीजें जब हम कृष्ण शब्द बोलते हैं तो कृष्ण शब्द में इन सारे गुणों का समावेश है, ये सारे गुण इसमें शामिल है। अगर हम सिर्फ कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण का मतलब है उसमें भगवान की गोवर्धन लीला भी आ गई, हाँ, भगवान ने जितने असुरों का वध किया वो भी सब इसके अंदर आ गया कृष्ण शब्द में, हाँ, भगवान की दामोदर लीला भी इसमें आ गई, है ना। सो रासलीला के बारे में प्रभु कहाँ पे, रासलीला कहाँ पे ले आए आप इसमें? और भगवान की सारा धन संपत्ति हर चीज इस कृष्ण शब्द के अंदर आ गई। तो हम बोलेंगे तो ये तो भगवान अकेले, कृष्ण अकेले, तो अकेले नहीं है भगवान। जब हम हरे बोलते हैं तो हरे का मतलब है भगवान की अंतरंगा शक्ति, है ना। तो अगर कोई बोले कि हरे शब्द का मतलब श्रीमती राधा रानी है, ऐसा नहीं है। हरे शब्द का मतलब है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो जब हरे शब्द जो है भगवान कृष्ण से के साथ लगेगा तो उसका मतलब भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। और जब ये हरे शब्द राम के आगे लगेगा, राम का मतलब है बलराम जी, है ना। तो जब बलराम जी के आगे लगेगा, बलराम जी के साथ जब इसका प्रयोग होगा तो मतलब बलराम जी की अंतरंगा शक्ति। तो जो बलराम जी की पत्नी है कौन? रेवती। चलो आपको काम दे दिया, आप ढूंढना बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है। अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम क्या है? जया बच्चन। देख लो अभी छोटे छोटा बच्चा है अभी ये, है ना। अच्छा अभिषेक बच्चन की पत्नी का नाम क्या? अब देख लो आप में से किसी को बलराम जी की पत्नी का नाम नहीं पता, तो आप ढूंढो आप बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है, आपस में चर्चा करना। सो कहने का मतलब ये है कि हरे शब्द का जो अर्थ है, ये बार बार बंद क्यों हो रहा है? हरे शब्द का जो अर्थ है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और जिसके साथ भी लगेगा इसका मतलब उस विशिष्ट व्यक्ति की अंतरंगा शक्ति। भगवान कृष्ण के साथ लगेगा तो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, और बलराम जी के साथ लगेगा तो बलराम जी की अंतरंगा शक्ति, ठीक है। तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो हरे कृष्ण में पूरा वैकुंठ जगत, पूरा वृंदावन धाम इस हरे शब्द में सम्मिलित है। इस हरे ये सारा पूरा वैकुंठ धाम जो है हरे शब्द से निकला हुआ है, और भगवान कृष्ण है। सो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो पूरा आध्यात्मिक जगत समेत हम भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। सो जब हम रोज भगवान कृष्ण का गुणगान करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, तो हम और भी अधिक उत्साह से जन्माष्टमी के दिन हम भगवान के उत्सव में भाग ले पाएंगे और भगवान का गुणगान कर पाएंगे। भगवान का गुणगान जो है वो कितने भव्य तरीके से होना चाहिए, ये देखने के लिए आप सबको जो है अवश्य जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर जाना चाहिए। आपके यहाँ पंजाबी बाग पास पड़ता है, तो आप सब पंजाबी बाग मंदिर जाओ। जो लोग जन्माष्टमी में सेवा करना चाहते हैं, और आप में से हर एक भक्त को सेवा में भाग लेना चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि हम स्त्रियां हैं कैसे जाएंगी, कैसे वापस आएंगी, रात को लेट हो जाएगा। वो सारी चिंता आप रघु प्रभु पे छोड़ दो, अपने आप संभालेंगे वो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप सब उत्साह दिखाओगे तो रघु प्रभु को और उत्साह आएगा, पायल माता जी इनको और उत्साह आएगा नहीं। लेकिन अगर आप भी बिल्कुल फुस गुब्बारे की तरह बैठे रहोगे तो कैसे ये लोग आपके लिए प्रबंध करेंगे। आप लोगों को इनके पीछे भागना चाहिए कि हमने जाना है, हमें नहीं पता कैसे अरेंज कर दो, है ना। ऐसा उत्साह होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो आप में से हर एक भक्त प्लीज आप रघु प्रभु को अपना नाम दो, हमको बोलो कि हमने जाना ही है प्रभु, हमें नहीं पता आप कैसे अरेंज करके दो, हमने वहां पर सेवाएं करनी है। हम देखना चाहते हैं कि लोग कैसे बिना खाए पिए हुए रात को 12 बजे तक जोर जोर से उछल उछल के भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि जब हम उनको देखेंगे तो हमारे में भी वो उत्साह आएगा, हम खुद भी वो करना चाहेंगे। जैसे हम कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति को देखें तो हमारे मन में इच्छा होती है कि हम भी अमीर बने, या जो जो जवान बच्चे हैं वो किसी वो बॉडी बिल्डर को देखते हैं, हाँ कोई वो मिस्टर यूनिवर्स और पता नहीं क्या होते हैं, और तो जो जिनकी बहुत बॉडी अच्छी होती है मिस्टर इंडिया, हाँ। सो जब हम उनको देखते हैं तो हमारा मन भी करता है कि जिम में जाएं, है ना, अच्छे से डोले बनाएं, हाँ। सो उसी प्रकार से जब हम भक्तों को अच्छे से देखेंगे कि कैसे अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो हमारे मन में भी उत्साह आएगा, हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे। और आप ये जान लो कि जो रघु प्रभु हैं आप सबके लिए बहुत इन्होंने कार्यक्रमों का जो है आयोजन कर रहे हैं। ये जन्माष्टमी पे आप इनके साथ जाओ, फिर अगले दिन प्रभुपाद का जो जन्मदिन है उसमें आप वापस मंदिर आओ, फिर संडे को आप जो बड़ा मंदिर है, आप जब सब गए थे लोग यहाँ से भी, तो वहाँ पर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का जन्मदिन है वो मनाया जाएगा, उसको व्यास पूजा कहते हैं, है ना। तो आप सब उसमें आओ, और फिर 2 तारीख को आपके यहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, है ना, आप सब भक्त मिलकर ही कर रहे हो वो आयोजन, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लो, है ना, और आपस में मिलो। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम खत्म हुआ घर गए बात खत्म हो गई, इस प्रोग्राम के बाद भी जो 6 दिन है आपस में मिलो और सोचो कि इस प्रोग्राम को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे इस प्रोग्राम को बढ़ाएं, कैसे हम अपने परिवार वालों को भी और अपने मित्रों को पड़ोसियों को इस प्रोग्राम में हम जोड़ें। तो आप सबको इसके ऊपर लगातार सोचना चाहिए, और जब आप ऐसा सोचेंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे बढ़ाना है, भगवान की सेवा में कैसे लगना है, तो ये जो सारी चीजें हैं इसके द्वारा क्या होगा, आप सबको भगवान का स्मरण होगा, है ना। जब आप भगवान की सेवा में जुड़ोगे, दूसरे लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ने के बारे में सोचोगे तो वो भगवान की सेवा है साक्षात, है ना। भगवान का अलग से स्मरण करना ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से स्मरण करने की कुछ विधि है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी महत्वपूर्ण है, सेवा में जुड़ना भी महत्वपूर्ण है, दूसरे लोगों को सेवा में जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसका आपको उतना ही लाभ होगा जितना हरे कृष्ण महामंत्र के जप से होगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जब इतने सारे उत्सव आ रहे हैं और आपके यहाँ पर प्रोग्राम जो है आयोजन हो रहा है और बाकी जगहों पर भी हम बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आप सब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, है ना, और आप सबकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देंगे रघु प्रभु। रघु प्रभु हैं, मदन प्रभु हैं, रोहित है, ये सब अखिलेश, ये सब मिलके कुछ ना कुछ अरेंज कर ही देंगे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत थोड़ी ना है। और आप लोग अपने परिवार वालों को बोलेंगे तो क्या नहीं लेके जाएंगे आपको, है ना, बिल्कुल लेके जाएंगे आपको, नहीं। सो इस तरह अगर आप जिद करोगे तो देखो कल की रोटी तब मिलेगी जब आज मुझे लेके जाओगे। जब ऐसे जिद करोगे तो आपके घर जो परिवार वाले आपको लेके जाएंगे मंदिर, तो जब वो मंदिर जाएंगे आपके साथ में तो आपके साथ साथ वो भी भगवान के दर्शन करेंगे, उनको भी आध्यात्मिक लाभ होगा। तो मंदिर में जाना सबके लिए फायदे का सौदा है, ठीक है। तो आप सब जुड़े,
4 से 5 लाख लोग,
तो रघु प्रभु बता रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन 4 से 5 लाख लोग मंदिर में आके दर्शन करते हैं भगवान का। तो अब आप सोचो उन 5 लाख लोगों में से आपका नाम नहीं है। तो अगली बार हम बात करें अगले प्रोग्राम में, तो अभी कुछ रघु प्रभु अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो अगली बार हम जब बात करें कि इस्कॉन मंदिर में 5 लाख लोग दर्शन के लिए गए थे, तो उन 5 लाख लोगों में आप लोगों का भी नाम होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते।